This podcast is an HT Smartcast original. Podcasts for every mood.
इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आयुर्वेद और घर की आम चीजें हमारे स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना सकती हैं। साथ ही हम जानेंगे कि बदलते मौसम में गले की समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है और देर रात तक जगने की आदत सेहत पर क्या असर डालती है।
सुनिए आचार्य बालकृष्ण को आयुर्वेद और वेलनेस से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए ऑन पतंजलि वेलनेस पॉडकास्ट। दिस ऑडियो सीरीज इज ब्रॉट यू बाय पतंजलि। आचार्य जी, आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है।
आचार्य जी, जिन लोगों को दूध या दूध के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके डाइजेशन में परेशानी होती है, उनके लिए कौन से आयुर्वेदिक उपाय सबसे ज्यादा असरदार होते हैं और क्या आप इन उपायों के पीछे का वैज्ञान या लॉजिक समझा सकते हैं?
जब हम गुरुकुल में अध्ययन करते थे उस समय पर गुरुकुल में हम लोग क्योंकि बहुत व्यायाम करते थे, बहुत प्राणायाम आसन करते थे, तो भूख भी बहुत लगती थी और एक अभिरुचि भी होती थी कि हम सेहत को, स्वास्थ्य को ठीक रखें। तो कंपटीशन होता था कई बार, विशेष करके दूध पीने में या घृत आदि जो पौष्टिक पदार्थ हैं उनके सेवन में। गायें गर्भिणी होती हैं, उसके बाद जब बच्चा होता है उसके बाद गायें ज्यादा दूध देती हैं और लगभग 6 महीना साल भर बाद दूध देना कम हो जाती हैं। तो कभी कभी गौशाला में बहुत ज्यादा दूध होता था, कभी थोड़ा कम होता था। जब ज्यादा दूध होता था तो हमें ज्यादा दूध मिलता था, तो हम सोचते थे इस दूध को कैसे हजम किया जाए। उस समय पर मुझे आज भी एक बखूबी स्मरण है, हम लोग जिनको ज्यादा दूध पीने की वो रहती थी कि दूध डाइजेस्ट हो जाए, कि दूध को डाइजेस्ट करने के लिए कि इसका पाचन ठीक हो, यदि पंचकोल का काढ़ा बना करके आप सुबह शाम पिए, उसके बाद यदि आप दूध पीते हैं तो दूध पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पेट बहुत कमजोर है, कुछ भी खाते हैं हजम ही नहीं होता, दूध का तो नाम लेते ही हाय तौबा करना शुरू कर देते हैं। बच्चे आजकल के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं को दूध अनुकूल नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं जी हम दूध से एलर्जी है, जो एलर्जी को भगाने का साधन है, जो ताकत की वस्तु है उसमें तो आपको एलर्जी है, और जिससे एलर्जी करना चाहिए उसके प्रति आपको प्यार है। तो बताइए, जिसका जो गुण है यदि उससे प्रीति नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के जो विकृतियां क्यों नहीं बढ़ेंगी। तो दूध से एलर्जी है, दूध आपको हजम नहीं होता है, उसको हजम करने के लिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया चित्रक मूल का काढ़ा बना के पीने से भी पूरा लाभ हो जाता है, कि चित्रक मूल के 2-3 ग्राम छाल को आप लगभग 400 ग्राम पानी में पका लें, पका करके जब 1/4 बचे छान करके आप उसको सुबह खाली पेट पिए, इससे पेट की बीमारियां वो तो दूर होंगी ही, इसके अतिरिक्त डाइजेस्ट सिस्टम जिनका ठीक नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, कुछ भी खाते हैं हजम नहीं होता है, पेट फूलता है, पेट में अफारा रहता है, दूध पीते ही जो टॉयलेट को भागना पड़ता है वो सब नहीं भागना पड़ेगा। आप सेवन करिए, यदि आपको आपके परिवार वाले और आपके मित्र मंडली या पड़ोसी यह भी जानते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है बोले इनको दूध सूट नहीं करता, आपको जानते हैं कि आप दूध पीने लायक योग्य आदमी नहीं हो, फिर भी कुछ दिन यदि आप इसका चित्रक छाल का काढ़ा या पंचकोल का, पंचकोल में जैसा अभी मैंने बताया आपको आयुर्वेद में चव्य, चित्रक, पीपल, पिपला मूल और सौंठ, ये 5 द्रव्यों का काढ़ा बना करके यदि आप पीते हैं तो आपके घर वालों को भी कुछ दिन में ताज्जुब और अचंभा होगा कि किस तरह से आपका जो पाचन प्रक्रिया है इतनी मजबूत हुई।
जी, लेकिन इस बदलते मौसम में सबसे पहले हमारे गले पर असर पड़ता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि गले की बीमारियों के लिए कौन सी औषधियाँ प्रभावशाली होती हैं?
गले की बीमारी में, गले में किसी भी तरह से कोई भी बीमारी हो, कंठ रोगों में भी यह एक महत्वपूर्ण औषधि मानी गई है, उसके लिए आप चित्रक मूल में थोड़ा मूलेठी मिला करके, मूलेठी, चित्रक मूल और 1-2 तुलसी के पत्ते डाल दें, लगभग आप 400 ग्राम पानी में उबालिए, 1/4 यानी कि 1/4 शेष रहने पर 1/4 जब बच जाए छान करके आप उसका सेवन कर सकते हैं, उससे आपके जो गला है वह ठीक हो जाएगा।
अच्छा, आजकल और काफ़ी टाइम से एक्चुअली हम लोग का जो रूटीन है काफ़ी हद तक बिगड़ चुका है। हमें देर रात तक जगने की आदत है और इसी वजह से हमारे रोज़मर्रा के जो रूटीन है या फिर हमारा जो स्वास्थ्य है उस पर बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे में सुबह उठने के क्या फ़ायदे हैं और वो हमारे जो रूटीन है उसको कैसे सुधार सकता है?
भोजन के 2 घंटे के बाद सोना चाहिए। तो लोग खाना खाते हैं 11 बजे फिर सोते हैं 1 बजे, ऐसा नहीं। हमको भोजन भी पहले ही करना चाहिए और यदि हमको लेट हो जाता है तो हमको थोड़ा सा आहार कम लेना चाहिए रात को, ये ध्यान रखना। प्रयास करिए 10 और 11 के बीच में आपको हर हालत में सो जाना चाहिए। अपने काम को, अपने रूटीन को, ऐसा आपातकाल को छोड़ करके, इमरजेंसी में कभी कुछ होना अलग बात है, रूटीन मत बनाइए। और प्रातः काल भी 4 और 5 के बीच में उठने की आदत बना लीजिए। सब बच्चों को ये आदत डाल दीजिए, जब सुबह उठने की आदत पड़ जाएगी बाद में फिर चाह करके भी कोई नहीं सो सकता, क्योंकि उस तरह की आदत पड़ती है। और जब लेट तक सुलाते हैं चाह करके भी जल्दी उठाने में भारी काम हो जाता है। बच्चों को बचपन से आदत डाल, इससे बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकेंगे, बहुत सारे रोगों से हमारा सिस्टम बिल्कुल ठीक रह सकेगा। उसको आयुर्वेद के हिसाब से मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, बातें बहुत हैं संक्षिप्त में जैसे, क्योंकि ये जुड़ी हुई बात है। जैसे सुबह जो जल्दी उठता हो उसको कब्ज की शिकायत लगभग लगभग नहीं होती है। एक आध मिल जाए तो अलग बात है भाई, कोई एक दो कोई मिल जाए तो अलग बात है, लगभग कब्ज की शिकायत नहीं होती है। और जो सुबह लेट उठता हो, 2-4 को छोड़कर के आपको एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका पेट साफ होता हो। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ, और आप अपने आसपास में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में जरा पता कर लेना। तो इसका कारण क्या है, इसके साइंस को भी मैं आपको समझाता हूँ। जो ये घड़ी है ना, टाइम का जो क्लॉक, जो हमारा सर्किल है जो घूमता है 24 घंटे में, सुबह जो होता है वह कफ प्रबल होता है। कफ का समय, जो प्रबल समय है, वो 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक लगभग है। उसके बाद में फिर पित्त कफ घटना शुरू होता है, फिर पित्त बढ़ना शुरू होता है दिन भर, फिर शाम को, रात्रि को फिर वायु बढ़नी शुरू हो जाती है। इसीलिए आप देखना जो कफ होता है ना वो बचपन में अधिक होता है। जितने भी छोटे बच्चे होते हैं ना उनको कफ की बीमारी ज्यादा होती है, खांसी होता है, एलर्जी होती है, कफ होता है, साइनस की शिकायत हो जाती है। ये जो सर्दी जुकाम कफ की शिकायत वो बचपन में ज्यादा होता है, कभी कभी किसी वृद्ध को भी होता है, परंतु अधिकांशतः बचपन में होता है। जवानी में क्या बीमारी होती है, जवानी में आप देखेंगे तो हमको या तो एसिड वाली प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी, स्किन वाली प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी, या इंडाइजेशन वाली प्रॉब्लम्स होंगी, या दूसरे भी स्किन से संबंधित जो चीज़ें हैं, वह बहुत सारी इस तरह की बीमारियां जवानी में होती है। और बुढ़ापे में क्या होता है, ये जोड़ घुटने घिस जाएंगे, जोड़ों में दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, अकड़ाहट होगी, इस तरह की। वह कौन से रोग हैं, वो वायु के रोग हैं। तो यह तो हो गया बचपन, बचपन जवानी और बुढ़ापे के हिसाब से बीमारियां। इसी तरह से प्रतिदिन वह वात काल, कफ काल और पित्त काल, पित्त का समय होता है, तो मध्याह्न में पित्त होता है, रात्रि को वायु और प्रातः कफ होता है। तो जब हमारा जब शरीर है, रात को जो वायु प्रधान शरीर होने से सुबह के टाइम पर, और वैसे भी आप देखेंगे रात को शरीर अकड़ेगा, सुबह बलगम बनेगा, दिन को जो है मुंह गला सूखेगा। तो ये वात पित्त कफ सिद्धांत बहुत वैज्ञानिक है। तो उसमें ये समझिए कि जब रात को वायु के समय, वायु का काम क्या है, वायु का काम है गति, और कफ क्या है, कफ है श्लेष्मा, चिकनाहट। तो वायु के द्वारा गति हो करके और जो कफ चिकनाहट होने से मल की जो क्रिया है, वो मल आराम से, जो मल विसर्जन की क्रिया है, पेट साफ होने की जो प्रक्रिया है वो ठीक ढंग से हो जाता है। सुबह पेट साफ होता है सुबह जल्दी उठने से। लेट हो जाएंगे तो वायु का समय खत्म हो गया, तो गति कौन देगा, मोशन जो है वो खत्म हो जाती है, फिर कफ चिकनाहट, गर्मी बढ़ेगी तो और खुश्की बढ़ेगी तो कब्ज बढ़ेगा, ये सिद्धांत है। और ये सिद्धांत को आप अपने घर में, अपने परिवार में या कुछ अपने आप से भी पूछ करके देख लेना, शरीर अपने आप बता देगा। तो ये शौच की क्रिया, इसको ठीक रखने के लिए हमको ठीक समय पर सोना जरूरी है। निद्रा, निद्रा में हमको कैसे सोएं, हम सामान्य रूप से इतना समझिए, क्योंकि जब हम सीधा सोने का विधान नहीं है, हालांकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग कुछ सीधे सोते हैं, कुछ उल्टे भी सोते हैं। सोने का विधान है करवट से, करवट से सोएं, और वो भी बाएं करवट से सोएं, जो बाईं ओर से सोने से, क्योंकि हमारी बाईं तरफ हृदय होता है और हृदय पर जोर कम पड़ता है, और बाईं तरफ से सोने से हमारा जो दायां सोर है ना, ये सूर्य नाड़ी जो है वह प्रबल होती है, इसलिए हमारी जठराग्नि तेज होती है, उससे खाया हुआ भी हजम हो जाता है। दो काम होते हैं, हृदय पर जोर नहीं पड़ता है और दायां सोर चलने से खाया हुआ पच जाता है, हजम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए हमको बाईं करवट सोना चाहिए। तकिया के लिए तकिया इतना हमको लगाना चाहिए जितने इस कंधे की और इसकी दूरी है, जितनी इसकी और इसकी दूरी है, आप देखो ना इसमें कितना इंच है, इतनी, इससे ज्यादा नहीं। कोई ज्यादा मोटा हो, इधर का ज्यादा बढ़ रहा हो तो थोड़ा मोटा लगा लेना, कोई ज्यादा ही पतला सुखड़ सा हो तो थोड़ा पतले कर लेना, इतना ही है। तकिया कितनी साइज होना चाहिए जिससे कि ये नीचे ना जाए, गर्दन नीचे होना ठीक नहीं है, स्पाइन हमारी उस रूप में सीधे रहना चाहिए, इतनी ही हमको तकिया की जरूरत है।
जी, आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ मैं कि अच्छी चीज़ों की आदत हमें ज़रूर डालनी चाहिए। आचार्य जी, मैंने हाल ही में पढ़ा था कि अमरूद, जिसे कई जगहों पर जामफल या अंबा भी कहा जाता है, इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस फल के सेवन से हमें क्या लाभ हो सकता है, और यही फल आयुर्वेद में किस तरह की औषधीय गुण के लिए प्रसिद्ध है?
हम वर्णन करने जा रहे हैं यह जिसको सभी जानते हैं, यह अमरूद जिसको हम बोलते हैं, जामफल जो है, या अंबा भी कई जगह पर इसको बोलते हैं, और संस्कृत में इसको दृढ़ बीजम कहा गया है, और दूसरा इसका जो नाम है संस्कृत के अंदर पेरुकम कहा गया है। दृढ़ बीजम इसलिए कहा गया कि जितना फल यह सॉफ्ट होता है, जितना अच्छा होता है, उतना ही इसके जो बीज हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, इसीलिए इसको दृढ़ बीजम कहा गया। तो यह अमरूद जो है, गुआवा जो है, जो सारा देश जानता है, सारा विश्व जानता है, वह एक ऐसा फल, परंतु यह फल नहीं, अभी तो यह एक अमृत फल है, यह एक दिव्य फल है। आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत ही सुप्रसिद्ध यह अमरूद का फल। तो ये गुआवा का जो फल है, यह एक निरापद फल है। इस फल का सेवन लगभग हर कोई कर सकता है। मिठास है, पर इतने मिठास नहीं कि मधुमेह के रोगी ना सेवन कर सके। जो मधुमेह के रोगी हैं, उनको भी यह आप सेवन करा सकते हैं, और जो किडनी के रोगी हैं, किडनी के रोगी भी मात्र जैसे वह फल सेवन कर सकते हैं, अनानास ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, वह सेब ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं। जो अति कम फलों का सेवन करते हैं, उन लोगों के लिए भी यह जो अमरूद है, आयुर्वेद में वैसे इसको त्रिदोष नाशक माना गया है, और विभिन्न रोगों में विभिन्न अनुपान के साथ लेने से हम बहुत सारे रोग मात्र अमरूद से दूर कर सकते हैं, मात्र बहुत सारे रोगों को हम अमरूद से, इस दृढ़ बीजम से ठीक कर सकते हैं। तो संस्कृत का यह प्यारा सा नाम दृढ़ बीजम आप याद कर लें, तो इसके बीज बहुत ही दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। और दूसरा, अमरूद पेट के लिए बहुत ही लाभकारी फल माना गया है, बहुत ही गुणकारी फल माना गया है। तो पेट के जो भी रोगी हैं, अमरूद यदि आप नियमित रूप से सेवन करा दें, तो पेट का जो इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, कब्ज है, वह आराम से ठीक हो जाता है। और इस अमरूद फल को मन को प्रसन्न रखने वाला फल भी कहा गया है। इसके सेवन से आपका जो मन है वह प्रसन्न रहता है, मन खुश रहता है, और यह अमरूद हृदय को शक्ति भी देता है। जिनका हृदय कमजोर है, जिनको घबराहट होती है, जिनको बहुत ही बेचैनी होती है, अमरूद का आप मुरब्बा बना करके भी रख सकते हैं। अमरूद का मुरब्बा हालांकि कम प्रचलन में है, तो वह हृदय के लिए, हृदय रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। आयुर्वेद की दृष्टि से अमरूद को दिमाग को ताकत देने वाली चीज भी मानी गई है। तो जिनको मस्तिष्क की ताकत की आवश्यकता है, जैसे आप बहुत कार्य करते करते थक जाएं, आपका दिमाग को विश्राम की जरूरत हो, तो थोड़ा आप एक दो अमरूद खा लें, तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग जो है पुनः उसी तरह से ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। यह बहुत ही लाभकारी माना गया है और आयुर्वेद के अंदर इसको दाह नाशक माना गया है। जिनके हाथ पैरों में जलन रहती हो उनको आप नियमित रूप से अमरूद खिला दें, कुछ समय तक वो नियमित रूप से अमरूद ले लें, वह आराम से ठीक हो जाता है। जिनको बहुत ज्यादा वीकनेस हो उन लोगों को भी यदि आप अमरूद खिला दें तो दाह के लिए, मूर्छा के लिए, मस्तिष्क के लिए, हृदय के लिए यह लाभकारी फल है अमरूद। तो इसके कुछ गुणों की हम आज चर्चा करेंगे। वैसे तो यह पूरा ही यह अमृत फल है, निश्चित रूप से यह बहुत ही लाभकारी है। तो अमरूद खाते समय एक ध्यान रखने की बात है, जैसे बाकी चीजों को जितना आप चबा करके खाएंगे उतना ही वह लाभकारी होता है। जैसे हम कहते भी हैं कि भगवान ने हमारे मुख के अंदर 32 दांत और जवाड़े को मिला करके 32 दे रखे हैं, तो 32 दांत है, तो हम 32 बार किसी चीज को चबाएं, यानी कि जितने आपके पास दांत हो उतने बार कम से कम चबाना चाहिए, प्रायः यह कहा जाता है। चबा करके भोजन ग्रहण करने से वो पाचक हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है, वह देह के लिए गुणकारी हो जाता है। और यह भी प्रचलन में है कि जो है दांतों का काम आंतों को न करना पड़े, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि आप चबा करके नहीं खाओगे तो इंटेस्टाइन पर, आंतों पर ज्यादा जोर पड़ेगा और उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, खाया हुआ जो है वह ज्यों का त्यों निकल जाएगा, वह लीवर और आपके पाचन प्रक्रिया को, आपके शरीर और सेहत को उससे नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए ध्यान रखने की बात होती है। और इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि भैया जो तुम्हारा दांतों का काम है वो आंतों के लिए मत छोड़ो, यदि दांतों से छोड़ दोगे गटागट गटक जाओगे तो फिर आंतों को जोर पड़ेगा, इसलिए पहले का काम पहले निपटाओ। बुद्धिमान कौन होता है? बुद्धिमान वही होता है जो समय के अनुसार काम करता है, और जो काम पहले करना चाहिए उस काम को पहले करता है और बाद वाला काम वो बाद के लिए छोड़ देता है। तो आप बुद्धिमान हैं, इसीलिए आप बुद्धिमान बने रहें इसके लिए। बाकी तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं, भोजन को धैर्य से करें, प्यार से करें और चबा करके खाएं।
मेथी के दाने जो हर रसोई घर में पाए जाते हैं, स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी जाने जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मेथी किन किन बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है? और हमें ये भी बताइएगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो मेथी दानों को अपनी सेहत के लिए कैसे इस्तेमाल किया करते थे।
अब हम बात करते हैं मेथी के दाने। मेथी का दाना भी जैसा कि मैंने कहा हर घर के रसोई में है, हमारे पूर्वजों को पता था। आज भी हमारी जो माताएं बहनें जब कद्दू की सब्जी बनाती हैं, जिसको पेठा बोलते हैं कई जगह कद्दू बोलते हैं, जो गोल गोल जो पम्पकिन होता है बड़ा गोल गोल, उसकी जब सब्जी पकती है तो जरूर उसमें मेथी का छोंक लगाया जाता है, क्योंकि वह वायु कारक होता है, तो वायु के शमन के लिए मेथी का छोंक लगाया जाता है। तो किन किन पदार्थों में मेथी का छोंक लगाना है यह हमारी माताओं बहनों को बखूबी परंपरा से पता है। इसी को ही बोलते हैं परंपरागत ज्ञान, इसी को ही बोलते हैं गुरु परंपरा से ज्ञान। तो वास्तव में ये जो परंपरागत ज्ञान है हमारी रसोई की, हमारे खान पान की, हमारे यहाँ से सदियों से चली आ रही है। पर आज फास्ट फूड, जंक फूड और ये जो पिज्जा बर्गर की वजह से कहीं हम अपनी सांस्कृतिक जो हमारी विरासत थी उसको भी हम भुला रहे हैं। खान पान की जो परंपरा थी आज विकृत हो रही है। हमें समय रहते ही उन चीज़ों के प्रति जरूर जागरूक होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ, यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक बात रही मेथी दाने की, तो यह डायबिटीज़ के लिए भी बहुत ही उपयुक्त है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो रात को 1.5 चम्मच मेथी, 4-5 ग्राम मेथी पानी में भिगो दें और सुबह उसको चबा चबा करके खाएं और उस पानी को भी पिएं। इस तरह से करने से जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल होती है और पेट भी इससे ठीक रहता है, और जिनको अर्थराइटिस है उसके लिए भी ये लाभकारी है। तो अर्थराइटिस के रोगी और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं ये दोनों ही लोग रात को मेथी को भिगो करके प्रातःकाल मेथी के दानों का सेवन करें और उससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। भिगोने के बाद में
जो इसकी उष्ण प्रकृति है वह प्रकृति भी परिवर्तित हो जाती है, वह आपको ज़्यादा गर्मी नहीं करेगी। आप सब जानते हैं जो अर्थराइटिस के रोगी होते हैं, हमारे यहाँ परंपरा से सर्दी में मेथी के लड्डू भी खिलाए जाते हैं। मेथी उसके लिए बहुत ही उपकारी है, बहुत ही गुणकारी है। इसी तरह से जो हमारी माताएं और बहनें जो डिलीवरी के बाद में जो काढ़ा उनको पिलाया जाता है उसके अंदर भी मेथी और अजवाइन मिला करके दिया जाता है डिलीवरी के बाद में, तो वो सब इन्फेक्शन और स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है और अंदर किसी कारण से कोई भी ओवरीज, यूट्रस में, गर्भाशय आदि में कोई विकृति रह गई हो तो वह भी दूर करता है। तो मेथी को माताएं बहनों को भी बच्चा होने के बाद में ज़रूर देना चाहिए, खाद्य के रूप में भी, भिगो करके भी, या जो भी काढ़ा वगैरह उनको पिलाया जाता है उसमें मेथी को ज़रूर दिया जाता है। और श्रद्धेय स्वामी जी का प्रसिद्ध नुस्खा लगभग हम सब देशवासी जानते हैं, जिनको शाइटी का प्रॉब्लम हो, चाहे अर्थराइटिस का हो, चाहे मस्कुलर प्रॉब्लम हो, हल्दी मेथी और सौंठ का पाउडर, हल्दी मेथी और सौंठ बराबर मात्रा में यदि आप पाउडर करके रख लेते हैं और एक एक चम्मच सुबह शाम लेते हैं तो शाइटी का प्रॉब्लम हो, चाहे अर्थराइटिस का हो, चाहे मस्कुलर प्रॉब्लम हो, सभी चीज़ में मेथी अत्यंत गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। उसके लिए आप मेथी का प्रयोग करके भरपूर लाभ पा सकते हैं। तो एक मेथी के बहुत अनेक गुण हैं, औषधि के रूप में आप निर्विवाद रूप से इस मेथी का सेवन कर सकते हैं। और जो आपके सर्दी जुकाम वगैरह है, मेथी को रात को भिगो करके उसको अंकुरित करके आप जैसे भोजन के साथ में भी थोड़ी मेथी नियमित रूप से ले सकते हैं। उसको लेने से जो आपके सर्दी जुकाम वगैरह है वह भी ख़त्म हो जाएगा। और मेथी का एक और प्रयोग है, मेथी को भून करके जब बिल्कुल लाल हो जाए उसको पाउडर करके आप दूध में थोड़ा सा डाल करके भी प्रतिदिन यदि आप ले लेते हैं तो उससे दूध हजम हो जाएगा, दूध डाइजेस्ट हो जाएगा, इससे आपकी जो पाचन प्रक्रिया है वो ठीक हो जाएगी और गैस नहीं बनेगा। और कॉफ़ी की जगह मेथी को भून करके यदि आप डालते हैं दूध के अंदर तो वह स्वाद भी आपको मिल जाएगा, आप इसका प्रयोग करके देखिए।
आचार्य जी, अब बात करते हैं अनाज की। क्या कोई विशेष प्रकार का अनाज है जो डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है?
जब कोई डायबिटिक होता है तो जो मधुमेह का रोगी है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है कि किस अनाज का सेवन करें हम। जब मधुमेह की बात आती है तो मधुमेह के रोगी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि अनाज के रूप में हम क्या सेवन करें, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। मधुमेह के रोगियों के लिए कोई निरापद अनाज है तो मैं कह सकता हूँ कि जौ सबसे निरापद अनाज है। तो जौ के रूप में आप मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही उपयुक्त प्रयोग है, बहुत लाभकारी प्रयोग है। जैसे आप 10 ग्राम जौ ले लें और 5 ग्राम तिल ले लें और 3 ग्राम मेथी ले लें, मेथी, तिल और जौ यदि इसको रात को दरदरा कूट करके मिट्टी के बर्तन में 400-500 ग्राम पानी में आप भिगो दीजिए, भिगो करके सुबह आप उसको मसल लें, वो थोड़ा बैठ जाएगा, थोड़ा लेसलेसा हो जाता है मेथी की वजह से, फिर थोड़ा सा बैठ जाने के बाद में उसको नितार करके छान करके पिए। यदि सुबह खाली पेट नियमित रूप से पीते हैं तो डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत ही उपयुक्त प्रयोग है, बहुत लाभकारी प्रयोग है। और जिनको डायबिटीज की वजह से दूसरी जो कॉम्प्लिकेशंस की संभावनाएं रहती हैं, किडनी डैमेज होने की, रेटिनोपैथी की, या और दूसरी जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको रोकने के लिए भी यह एक अचूक, बहुत ही सुलभ, बहुत ही सरल औषधि है।
आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ज्ञान और समर्थन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, धन्यवाद। पतंजलि वेलनेस पॉडकास्ट को सुनने के लिए लॉग ऑन टू htsmartcast.com। आप पतंजलि वेलनेस पॉडकास्ट को गूगल, एप्पल, स्पॉटिफाई, गाना, जियो सेवन जैसे अन्य म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्स पर भी सुन सकते हैं। इस ऑडियो सीरीज पर अपडेट्स पाने के लिए हमें फॉलो करें ऑन ऑल मेजर सोशल मीडिया चैनल्स। हमारा हैंडल है @htsmartcast।
To stay updated on this podcast, follow us at HD Smartcast on all the major social media platforms. To listen to more such podcasts, log on to www.hdsmartcast.com.